आप सुन रहे हैं SBS हिंदी। अपने रेडियो पर हर शाम सुनिए हमारा कार्यक्रम। आप हमारा कार्यक्रम हमारी वेबसाइट पर और SBS मोबाइल ऐप द्वारा सुन सकते हैं। sbs.com.au/hindi पर जाएं।
नमस्कार श्रोताओं, मैं हूं नताशा कॉल SBS हिंदी टीम से। हाल ही में जारी एक नई रिपोर्ट के अनुसार ऑस्ट्रेलिया की टेक्नोलॉजी वर्कफोर्स यानी टेक्नोलॉजी से जुड़े कार्यबल में पहली बार कमी आई है। ऑस्ट्रेलिया कंप्यूटर सोसाइटी द्वारा प्रकाशित की गई इस रिपोर्ट में टेक सेक्टर में और अधिक लोगों के शामिल होने और AI स्किल्स और ट्रेनिंग में सरकार से अधिक निवेश की मांग की गई है। ये रिपोर्ट ऑस्ट्रेलियन ब्यूरो ऑफ स्टैटिस्टिक्स के डेटा का उपयोग करते हुए तैयार की गई है। इसका नाम है ऑस्ट्रेलियाज डिजिटल पल्स और ये 12वीं वार्षिक रिपोर्ट है और इस रिपोर्ट में पाया गया है कि 2025 में ऑस्ट्रेलिया में टेक्नोलॉजी क्षेत्र में कार्यरत लोगों की संख्या 0.3% घटकर लगभग 9,67,000 रह गई है। इसके विश्लेषण से पता चलता है कि 2024 के बाद से ICT सेल्स, ICT ट्रेड्स और ICT एडमिनिस्ट्रेशन एवं लॉजिस्टिक्स सपोर्ट में भूमिकाओं की संख्या में कमी आई है, जबकि टेक्नोलॉजी प्रोफेशनल और मैनेजमेंट भूमिकाओं में पदों की संख्या बढ़ी है। ये निष्कर्ष सरकार के पिछले शोध के अनुरूप है, जिसमें पाया गया था कि सेल्स और एडमिनिस्ट्रेशन की नौकरियां जनरेटिव AI मॉडल द्वारा संभावित ऑटोमेशन के प्रति सबसे अधिक संवेदनशील थी। इस रिपोर्ट को और बेहतर समझने के लिए हम ऑस्ट्रेलियन कंप्यूटर सोसाइटी के एक प्रतिनिधि से तो बात करेंगे ही, लेकिन इस ऑडियो के पहले भाग में हम जुड़ रहे हैं इस क्षेत्र के आमिर कुतुब से, जो एक IT कंपनी चलाते हैं। आमिर, सबसे पहले हमें बताएं कि आप किस कार्य से जुड़े हैं और ऑस्ट्रेलिया में क्या काम कर रहे हैं।
तो मैं ऑस्ट्रेलिया में एक मल्टीनेशनल AI कंपनी रन करता हूँ और हम लोग डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन के लिए AI सॉल्यूशन इम्प्लीमेंट करते हैं।
आमिर, ये बताएं, जो ये ACS की नई रिपोर्ट जारी की गई है जिसमें बताया गया है कि टेक सेक्टर का वर्कफोर्स है उसमें कमी आई है, तो आप इस रिपोर्ट को कैसे देखते हैं, आप क्या समझते हैं इस रिपोर्ट से?
जी, ये मैंने रिपोर्ट पढ़ी और मैं इससे पूरी तरह सहमत हूँ। इस वक्त अगर आप ऑस्ट्रेलियन IT लैंडस्केप को देखें तो टेक वर्कफोर्स की जरूरत जो है यहाँ पे ज्यादा है और अवेलेबिलिटी जो है वो कम है, और इसके पीछे दो मेन रीजन है। पहला ये कि बहुत सारे बिजनेसेस इस वक्त AI एम्ब्रेस करने की कोशिश कर रहे हैं, AI में घुसने की कोशिश कर रहे हैं, इस वजह से उनको बहुत सारे लोग चाहिए जो AI सॉल्यूशंस डेवलप कर सकें, तो इससे डिमांड जो है वो बड़ी है। लेकिन दूसरी तरफ अगर आप देखें तो हमारे माइग्रेशन रूल्स, जो इमिग्रेशन रूल्स हैं, वो टाइट हो रहे हैं। हम जो यूनिवर्सिटीज यहाँ पे स्किल्स प्रोड्यूस कर रहे हैं वो उतने ज्यादा है नहीं, तो बेसिकली क्या है कि जितनी टेक वर्कफोर्स है वो ऑलरेडी एब्जॉर्ब है और जो हमें एक्स्ट्रा वर्कफोर्स की जरूरत होती वो हमें मिल नहीं पा रही है, और ये चीज हमने अपनी कंपनी के साथ भी देखी। कुछ स्किल्स ऐसे हैं जो हमको चाहिए वो यहाँ पे है नहीं, और इसकी वजह से हम लोग को जो है फिर कुछ दूसरे ऑप्शन जो है वो ट्राई करने पड़ते हैं।
जाहिर सी बात है, आमिर, आप भी अपनी IT कंपनी के लिए हायरिंग करते हैं, लोगों को एम्प्लॉय करते हैं, तो आपका अनुभव क्या है और क्या देखने को मिल रहा है?
तो इस वक्त हम लोग जो स्किल्स देख रहे हैं वो थोड़े डिफरेंट है जो पहले स्किल्स होते थे। पहले क्या था कि अगर आपको चीजें जो है वो बहुत नीश हुआ करती थी, एक डेवलपर हुआ करता था, एक प्रोजेक्ट मैनेजर, एक बिजनेस एनालिस्ट, एक टेस्टर। इस वक्त जो जमाना है वो है फॉरवर्ड डिप्लॉयड इंजीनियर्स का। इसका मतलब ये है कि एक वो इंसान जो बिजनेस की रिक्वायरमेंट को समझ भी सके और साथ में उसको डिजाइन भी कर सके और उसको इम्प्लीमेंट भी कर सके। तो ये जो स्किल सेट है ये इस वक्त मार्केट में मिलना मुश्किल है, क्योंकि ज्यादातर लोगों ने साइलोज में काम किया है, तो हम लोगों को भी बहुत चैलेंज हो रहा है इस वक्त लोगों को ढूंढने में। तो हम लोग क्या कर रहे हैं ज्यादातर कि हम लोग इस वक्त लोगों को लेके आ रहे हैं बिजनेस में, उनको ट्रेन कर रहे हैं नेक्स्ट 3 to 6 months और फिर उसके बाद हम उन्हें इंडस्ट्री में डिप्लॉय कर रहे हैं।
तो क्या ये आप हायरिंग लोकली कर रहे हैं?
जी, लोकली हायर कर रहे हैं इस वक्त। हमारा बिकॉज ग्लोबल बिजनेस है तो हमारी इंडिया में भी जो है वो टीम है और कुछ मेंबर्स UK और दुबई में भी है, लेकिन कुछ लोग जो है हम यहाँ पे लोकली हायर कर रहे हैं, क्योंकि बिजनेसेस को ऐसे लोग चाहिए जो बिजनेस के अंदर जा सके, उनके साथ वर्क कर सके, क्लोजली वर्क कर सके। इसलिए अब हमें वर्कफोर्स की जरूरत ऑस्ट्रेलिया के अंदर है, सिर्फ आउटसोर्सिंग से हमारा काम नहीं चल सकता।
अच्छा,
तो हमें ऐसे लोग चाहिए जो बिजनेस के साथ वर्क कर सके।
तो ऑस्ट्रेलियन कंप्यूटर सोसाइटी की ये रिपोर्ट ऐसे वक्त आई है जब ऑस्ट्रेलियाई सरकार ने स्किल वीजा आवेदनों की प्रोसेसिंग को लेकर नए बदलावों की घोषणा की है। आपको बता दें, स्किल वीजा आवेदनों की प्रक्रिया सरकार की प्राथमिकताओं के अनुरूप की जाती है। ये प्राथमिकताएं मिनिस्टेरियल डायरेक्शन 119 में आधारित हैं, जो 25 जुलाई 2026 को लागू हुआ था, और इसने मिनिस्टेरियल डायरेक्शन 105 के तहत लागू पिछली प्राथमिकताओं की जगह ली। तो नई प्राथमिकताएं यानी प्रोसेसिंग प्रायोरिटीज क्या हैं? माइग्रेशन एजेंट सीमा चौहान हमें बताती हैं।
जी, सो जो आईटी प्रोफेशनल्स हैं वो मीडियम टू लॉन्ग टर्म लिस्ट में है, जो सबसे अच्छी लिस्ट है उस लिस्ट में है, तो उनके पास वीजा ऑप्शंस बहुत सारे हैं। लेकिन जो फेडरल गवर्नमेंट इनविटेशन राउंड भेजती है, उसमें लास्ट इनविटेशन राउंड में आईटी प्रोफेशनल्स को इनवाइट नहीं किया गया है। लेकिन स्टेट और स्टेट्स वगैरह नॉमिनेशन कर सकते हैं, तो वो ईच हर स्टेट्स के इंडिविजुअली इन्विटेशन आते हैं। इसके अलावा एम्प्लॉयर्स भी स्पॉन्सर कर सकते हैं, एम्प्लॉयर्स भी अपने एम्प्लॉयज को स्पॉन्सर कर सकते हैं। लेकिन अभी रिसेंटली जो गवर्नमेंट की डायरेक्शन आई है, उसमें प्रायोरिटी प्रोसेसिंग के लिए जो आईटी प्रोफेशनल्स है वो प्रायोरिटी में नहीं है।
जी,
जो लोग प्रायोरिटी में नीचे आते हैं, उसमें से जो ऑनशोर है उसमें आईटी प्रोफेशनल्स आते हैं। तो जो यहाँ पे है, ऑस्ट्रेलिया में है, उनको पहले वीजा मिला जाएगा। जो ऑस्ट्रेलिया से बाहर है वो लास्ट इन प्रायोरिटी है। तो अब डिपेंड करता है कि आप किस प्रोसेस से जा रहे हो, और जब आप यहाँ पे होंगे और आपको कोई एम्प्लॉयर मिल जाता है तो आप रिजिंग वीजा पे चले जाते हो, तो आप इमीडिएटली, अगर आपके पास वर्क राइट है, तो आप काम करना शुरू कर सकते हो। लेकिन अगर आप ऑस्ट्रेलिया से बाहर हो तो अब आपको कंसिडरेबल टाइम वेट करना पड़ेगा।
डिपार्टमेंट ऑफ होम अफेयर्स के अनुसार 2023-24 से हर साल ऑस्ट्रेलिया में स्किल्ड आईटी प्रोफेशनल्स भेजने वाले प्रमुख देशों में भारत, चाइना और नेपाल रहे हैं। सीमा चौहान कहती हैं,
देखिए वो तो एग्जैक्ट नंबर तो नहीं बता सकती मैं आपको कि कितने लोग अप्लाई कर रहे हैं, लेकिन जो एम्प्लॉयर पाथवे है वो तो डिमांड ड्रिवन है। जब एम्प्लॉयर्स को जरूरत होगी वो डिमांड ड्रिवन है। जो जनरल स्किल माइग्रेशन है उनमें ऑब्वियसली कैपिंग है, और वो सारे एक ऑक्यूपेशन के लिए नहीं है, वो सारे ऑक्यूपेशन के लिए एक साथ है। तो जब, जैसे मैंने आपको पहले बताया कि फेडरल गवर्नमेंट जो लास्ट टाइम इन्विटेशन भेजे थे उसमें आईटी प्रोफेशनल्स नहीं थे, और नेक्स्ट राउंड जो जनरल स्किल माइग्रेशन का होगा वो 30 सितंबर को होगा, उसमें पता चलेगा कि फिर कितने आईटी प्रोफेशनल्स को इनविटेशन गया है, किस पॉइंट्स पे गया है।
तो ये रिपोर्ट ऑस्ट्रेलिया की मौजूदा माइग्रेशन नीतियों के बारे में क्या कहती है? इस ऑडियो के अगले हिस्से में हम इसी पर चर्चा करेंगे ऑस्ट्रेलियन कंप्यूटर सोसाइटी के प्रतिनिधि से। आपको बता दें, ये जानकारी केवल सामान्य जानकारी के उद्देश्य से है। वीजा और माइग्रेशन नियम बदल सकते हैं। अपनी स्थिति से जुड़ी सही और मौजूदा जानकारी के लिए ऑस्ट्रेलियाई गृह मंत्रालय या पंजीकृत माइग्रेशन एजेंट से सलाह लें। इस एपिसोड के दूसरे हिस्से में हम ACS यानी ऑस्ट्रेलियन कंप्यूटर सोसाइटी की ऑपरेशन हेड बेट्सी ग्रेग से बात कर रहे हैं, और उनसे ये जानने की कोशिश कर रहे हैं कि रिपोर्ट के आंकड़े क्या बताते हैं और ऑस्ट्रेलिया के टेक्नोलॉजी वर्कफोर्स में माइग्रेशन की क्या भूमिका है। आपको बता दें, ये इंटरव्यू अंग्रेजी में किया गया है। A very warm welcome to you, Betsy. So what can you tell us about this Digital Pulse report?
The ACS Digital Pulse is supported by Deloitte Access Economics, and we are in our 12th year of reporting. What we do is we take a pulse check across digital skills in the technology sector and put a real focus on where the tech workforce and the tech workers within it are concentrated and supported. In this year's report, we saw that the national technology sector contributed $142 billion, up 5% in real terms, and digital skills across the Australian workforce contributed $476 billion. Now, interestingly, this year, for the first time, we saw that the workforce, technology workforce, fell 0.3% to 967,000 in 2025. While this is a short-term, we believe, adjustment, there is still continued interest and demand long-term, and requiring an additional 259,000 tech workers by 2035.
Do you think it's a temporary correction after rapid post-pandemic growth, or start of a more concerning trend?
No, I do think it's a more short-term correction, to your point. Long-term, we know that there's a real focus on AI capability, adoption, and supporting the underlying economy. And that will require technology professionals across the sector, not just at big tech, but in each opportunity available for Australia.
Right. Betsy, what was the most concerning finding in this year's report?
I guess as it was the first workforce contraction, the tech workforce is expected to grow at twice the rate of broader employment growth for the next decade. And this signals that we have some work to do, and it's going to take more than just the same approach to meet this demand. So we're discussing a dual growth support, both through the domestic talent streams, supporting upskilling, skilling, and reskilling, as well as support for migration channels and means for innovation to be activated here in Australia.
Could you give us a sense of how large the migrant or overseas-born workforce is within Australia's tech sector?
If I recall from the report, and I can confirm this again, I believe it's about 20% of the existing tech workforce is comprised of both skilled migrants and temporary workers, recognizing that those on that journey may transition into permanent residents and citizens.
Right.
We know that that is only a short-term view, whereas more broadly, we know that 40 to 45% of the whole tech workforce here in Australia is comprised of those born overseas, and there's a real commitment to continuing that diversity.
How do you see current migration settings for Australia to meet its future technology workforce needs?
We're in active conversations with government around how this could be adjusted and supported to make sure that that innovation and capture occurs, discussing particularly around how current systems focus on occupations or present demand don't reflect necessarily the digital skills or the skills-led approach we like to see and observe here within the market. For instance, somebody who perhaps can migrate as a software developer could also probably migrate and be supported through other occupations within the tech sector as those skills are shared and broad across.
Right.
And therefore, we're talking more about how can the system reflect the demand and how can it move faster? But albeit we don't want that demand and shift and change to disrupt migrants on the journey. And so there has to be support for the transparency and structure so that there's a bit more certainty in the process as a whole.
So Betsy, would you say the tighter migration settings have contributed to the decline in Australia's technology workforce?
Yes, you could see some correlation there, but it's not the whole picture.
Yeah.
We know that domestic talent as well, through, you know, large media news coverage, that there has been disruption, redundancy, a shift in how people are engaged through the workforce, and general looks at how we augment the skills across the sector. So it's multi-tiered.
Right.
It's not just one element,
okay,
augmenting our innovation or that, you know, 0.3% decline. But we also see now the opportunity for reskilling and a real focus now on career changers or those wanting to enter the workforce and be a part of this critical change and innovation.
Let me ask you the other way. Is migration a part of the solution?
And absolutely it is, yes.
Yeah. And if it is, what would be an effective migration policy look like for the technology sector?
For Australia, there's a real opportunity here to get creative and think not only about the baseline qualifications, work experience, and proof points of a professional, but more so about the skills currency and the value and potential that those digital skills could bring to the economy. In the migration settings, that's looking then away from occupations and more towards a skills-led approach, just how we would also recommend hiring and businesses support new tech talent and diverse tech talent into their teams. And similarly, recognizing that this can't just be all business-led either. There needs to be pathways for individuals that are clear and provide the full opportunity for them to contribute to the economy and to the workforce.
Betsy, Department of Home Affairs have confirmed with us that the top suppliers of IT workforce for Australia are India, Nepal and China. But do you think Australia has become less attractive to these tech workers from India and or these countries? Or are we still successful competing for that talent?
I think there's absolutely still interest and demand. When looking at migrant feedback on why they pursued this in the first place, it's often more than just the job. It's about quality of life and the opportunities that Australia can provide that may not be available to them in their home countries. I really take heart and supportive of all the great work that's happening in India to, you know, recognizing that their gender gap is great, actually, in the tech workforce. I think it's at 50-50 or close to, and we could learn just from the success, but also recognizing that Australia in itself is dynamic, and we are trying to use multiple different approaches to resolve and support the innovation here in the country.
So are there any particular sector where we are losing tech workers?
So technical, professional, and management roles continue to grow, while some ICT sales, trades, and administrative roles do decline. AI, as we talked about before, is absolutely changing technology work, but the evidence doesn't support a simple narrative that AI is just simply eliminating the needs for those tech professionals. Again, if 70% of those tasks that a tech worker is doing are influenced now by AI or supported, there's opportunity now to look at how can we support, upskill, and augment for the future. So a really good example of this is when you think about a data analyst, it used to be more about entering the data and providing the means for that data to be captured. Whereas with AI and support, that role actually adjusts into more quality assurance. Is the data correct? How do I know it's correct? Where do I sense check and ensure that AI has processed this correctly? And there's a continuing opportunity in that space. And there's real great collaboration in education, in the vet sector and beyond to augment and support that change in the workforce.
Sorry, one last question, Betsy. If government was to look at the report, what are the top key takeaways?
Excellent. Top key takeaways. I'm cheating because I went to the event yesterday.
Okay.
and I'm just recalling back to a key visual. So we do break this down into three key areas. The opportunity to innovate and support AI into the ecosystem. There's also an opportunity here to support the skills uplift and the workforce as a whole, both nurturing domestic talent, but also those migration pathways. And then lastly, and something we haven't yet covered, is talking about the pipeline more broadly, how we can support teachers teaching the digital curriculum and ensuring that those in school today see opportunities and pathways into a tech career.
थैंक यू सो मच बेट्सी। इस इंटरव्यू में शामिल लोगों द्वारा व्यक्त किए गए विचार उनके अपने हैं। SBS हिंदी ना तो उनसे सहमत है और ना ही असहमत।
SBS रेडियो से डाउनलोड करने के लिए आपका धन्यवाद। हमारा पूरा कार्यक्रम आप कैसे सुने इसके लिए sbs.com.au/Hindi पर जाएं।